प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अभियान की नींव बनेगा। बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को दी गई गारंटी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई है। अखिल भारतीय उद्योग संघ ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% से 7% की वृद्धि का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की आशावादी छवि दिखाता है। संगठन के अध्यक्ष डॉ विजय कलंत्री ने कहा है कि सर्वेक्षण में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की पहचान अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में की गई है, जो बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण में एमएसएमई क्षेत्र के डिजिटीकरण और अविनियमन पर बल दिया गया है। डॉ कलंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अमृतकाल में नवीकृत नीति में 6 क्षेत्रों पर ध्यान देने की सराहना की है। ये 6 क्षेत्र हैं कृषि, एमएसएमई, निजी निवेश, हरित परिवर्तन, वित्त, शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर दूर करना और सरकारी नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए क्षमता बढ़ाना। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मिस्र के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं। कल नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रीय दिवस समारोह में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी लाभ के नए अवसर तलाश रहे हैं, जिससे आर्थिक सहयोग में लगातार विविधता आ रही है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक भारतीय कंपनियां मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिकी और हरित ऊर्जा पर केन्द्रित उद्योगों में निवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मिस्र के साथ भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की साझेदारी और बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया है। सुश्री हसीना ने राजधानी ढाका में उद्योगपतियों से कहा है कि स्थिति में सुधार होने पर कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए उन्हें कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री का यह बयान आरक्षण कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आया है। देश में हिंसा के दौरान 147 लोग मारे गए। चीन के दक्षिण पश्चिम में सिचुआन प्रांत में बारिश और बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या 14 हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कल शाम कहा है कि 25 लोग अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी ड्रोन, खोजी कुत्तों और अन्य उपकरणों की सहायता से लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। क्षेत्र में शनिवार को मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सिन्हा गांव में 40 से अधिक घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 में स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज चार्ली कैसल ने अपने पहले एकदिवसीय मैच में 7 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। कैसल ने डंडी में ओमान के साथ मैच में 5 ओवर और 4 गेंद में 21 रन देकर 7 विकेट लेकर इतिहास रचा। कैसल ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2016 में बांग्लादेश के साथ अपने पहले एकदिवसीय मैच में 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में अब तक अविजित भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर है। अन्य मैच में दोपहर 2 बजे से पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात आमने सामने होंगे। कल दाम्बुला में ग्रुप बी के मैच में मेजबान श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रनों से हरा दिया। उससे पहले बांग्लादेश ने थाईलैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।